अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयेहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीजुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगनात् रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परेजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधाकृष्णपादाम्बुज सहगनात् ललिता श्री विशाखानितांश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्त्यावतार भक्ताक्ष्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बित भुजौ कनकपदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आनन्दलीलामय विग्रहाय हे माभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुर्भ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाल भज मुरली मनोहर नंद लाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 15। गर्भे प्रणीते देवक्या गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्त्रंसितो गर्भ अहो विस्त्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः इति पौरा विचुक्रुषुः गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्त्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः। Mothers, गर्भे जब गर्भ प्रणीते ले जाया गया देवक्या देवकिका रोहिणीम रोहिणी के गर्भ में योग निद्रया योग माया द्वारा अहो हाय विश्रमसिता नष्ट हो गया गर्भ गर्भ इति इस प्रकार पौराः घर के रहने वाले विचुक्रुषुः विलाप करने लगे। अनुवाद, जब योगमाया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से ये कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। तात्पर्य, महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो दबाव के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया। किंतु हरिवंश में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ में बालक को खींच करके रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया है। कुछ समय बाद जब वह जगी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा हो चुका है। अतएव वो बहुत चिंतित थी, किंतु योग माया ने उसे बतलाया, हे शुभे तुम्हारी बालक को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं देवक के गर्भ से बालक खींच रही हूं, इसलिए तुम्हारी बालक का नाम संकर्षण होगा। योग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। भगवद गीता 2:59 में कहा गया है, यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जाग्रतिं संयमी तस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। जो सभी जीवों के लिए रात है वो संयमी पुरुष के लिए जगने का समय है, और जो सारे जीवों के जगने का समय है वही मुनियों के लिए रात होती है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था योग निद्रा कहलाती है। इस अवस्था में सारे भौतिक कार्यकलाप स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। इस तरह योग निद्रा की व्याख्या योग माया के रूप में की जा सकती है। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। फलतः महल में सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। सबसे पहले कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों का निधन किया। सप्तम पुत्र बलराम जी हैं, रेवती, रमणु, राम, कामपाल, हड़ायुध। अमरकुश पुराण के अनुसार भगवान बलराम के अनन्य नामों में से कुछ प्रमुख नाम जैसे बलभद्र, बलराम, रेवती, रमण, राम, कामपाल, हड़ायुध इत्यादि हैं। भगवान बलराम जी जब त्रेता युग में भगवान राम जी के साथ श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय हो, जब लक्ष्मण के रूप में अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज बनकर के पधारे, तो लीला जब आगे बढ़ते गया, माता जानकी को निर्वासन दंड देने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी को चुना और लक्ष्मण को कहा, हे अनुज मेरे, तुम्हारे भाभी को वनवास में छोड़ाओ। पर बलराम जी राजी नहीं थे, शेषनाग। वो जानते थे जो माता सीता को निर्वासन दंड नहीं होना चाहिए, परंतु छोटे भाई होने के कारण वो भगवान राम से तर्क वितर्क नहीं कर पाए और भगवान से कहा, हे भगवान, जभी जभी मैं आपके साथ आता हूं, आपकी लीला को बढ़ाने के लिए आता हूं, परंतु आज जो कार्य आपने मेरे से करवाया, आने वाला दिन मैं आपका साथ नहीं दूंगा। अगर मैं आपके साथ आया तो बड़े भाई के रूप में आऊंगा, छोटे भाई के रूप में नहीं, ताकि आप मुझे आदेश नहीं दे पाओ। तब से भगवान बलराम जी बड़े भैया के रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ पधारे। द्रव्याम शोभितलांगलम समुषलम कादम्बरी चंचलम रत्नाध्यावरं कुंडलम भुजबळई आक्रांतं भ्रूमंडलम वज्रभ्रामरे चारुगंडजुगलम नागेन्द्रहारज्वलम संग्रामे चपलम शशंकधवलम श्री कामपालम भजेत। बलराम जी बहुत पराक्रमी है, हल मुसल को धारण करके वो संसार को संहार करने में समर्थ हैं। और जभी जभी कोई लीला आया और भगवान अपनी पराक्रम दिखाए, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हमेशा कुछ ना कुछ लीला बलराम जी के साथ ऐसे करते हैं, बलराम जी बड़े मोहित हो जाते हैं, बलराम जी को समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए बाप भगवान बलराम जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्तों को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। बलराम जी आद्य गुरु हैं, जब बलराम जी की कृपा मिल जाए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को समझना वा श्री कृष्ण चंद्र जी का भक्ति बहुत सरल हो जाता है। मेरे भक्त, भक्ति जीवन तो सभी बिताते हैं, पर सत्यनिष्ठ भक्त कोई कोई होता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यदि सत्य नहीं होता ये धरती माता नहीं टिकता। ये धरती अगर स्थिर है वो सत्य के कारण ही है। सत्येन तपते रवि ही, रवि कहते हैं सूर्य देवता को, सूर्य भगवान यदि गर्मी देते हैं, तपते हैं, तो सत्य के कारण ही तपते हैं। सत्येन वाति वायुंश्च, सत्य के कारण हवा बहती है। हवा रुक जाए, कोई भी मानव जीवन का जीवन धारण करना संभव नहीं है। तो सत्य के कारण ही वायु बहता है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सारा जगत सत्य में ही स्थित है। इसलिए गर्भ स्तुति में समस्त देवताओं में भगवान देवकी के गर्भ को स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्येस सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे भगवन, आप स्वयं सत्य की मूर्ति हैं, इसलिए हम आपके चरणारविंद में शरण लेते हैं। समस्त देवता जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुणवंती देवैस्तवै वेदे सांग क्रमोपनिषदै गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्यांतं विदुसुरा सुरगण देवाय तस्मै नमः। ये बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी, ब्रह्मर्षि भगवान की चरण कमल की गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। और बलराम जी की कृपा हो तो भगवान समझ में आना बड़ा सरल होता है। तो भगवान को समझने के लिए सत्यनिष्ठ भक्त होना बहुत आवश्यक है। महाभारत की कथा है, सत्यदेव नामक एक राजा थे। उन राजा सत्यनिष्ठ सत्य प्रेमी और सत्य के सिवा कुछ नहीं जानते थे। एक दिन प्रभात समय में अपनी राजभवन में थे, उन्होंने देखा जे कि एक सुंदरी स्त्री घर से निकल करके जा रही है। सत्यदेव राजा ने पूछा, हे देवी, आपका नाम क्या है? देवी ने कहा, मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी हूं। बोले, आप मेरे घर से क्यों जा रहे हो? ना, मैं जा रही हूं और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लक्ष्मी जी चली गई और राजा कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात एक सुंदर सा युवक घर से बाहर निकला। राजा ने कहा, हे देव, आप कौन हो? बोले, मैं धन हूं। जब लक्ष्मी ही तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मैं कैसे रह सकता हूं? मैं जा रहा हूं। राजा चुप रहे। तत्पश्चात और एक युवक घर से निकला। राजा बोले, हे देव, आप कौन हो? बोले, मैं सदाचार हूं। बोले, मैं दान हूं, सॉरी, बोले, मैं दान हूं। जब लक्ष्मी नहीं रहा, दान आप किसको दोगे? तो मैं भी आपका साथ दे नहीं सकता। तत्पश्चात और एक युवक निकला। राजा बोले, आप कौन हो? बोले, मैं सदाचार हूं। जब लक्ष्मी नहीं रही तो फिर मैं सदाचार, आप दान नहीं दे सकते तो फिर मैं सदाचार में कैसे रह सकता हूं? मैं भी जा रहा हूं। राजा चुप रहे। तत्पश्चात और एक पुरुष निकला। राजा बोले, हे देव, आप कौन हो? बोले, मैं यश हूं। जब सभी तुम्हारा साथ नहीं दिया और यश कीर्ति में भी एक घर में नहीं रह सकता, वो भी चल बसे, सब चल दिए। राजा चुप रहे। तत्पश्चात और एक युवक निकला। राजा ने कहा, हे प्रभु, आप कौन हो? बोले, मैं सत्य हूं। जब सदाचार नहीं रहा, लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं रहा, मैं कैसे रह सकता हूं, मैं जा रहा हूं। राजा बोले ऐसा नहीं हो सकता, नाम मेरा सत्यदेव है, आप ही के कारण मैं सभी को तो छोड़ दिया, मैं किसी को रोका नहीं, पर आपको तो जीवन में मैं कभी छोड़ा ही नहीं, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हो, आप ही के नाम लेकर मैं जीता हूं, सत्य की पूर्ण साथ मैं दे रहा हूं, आप मुझे नहीं त्याग सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सत्य जा नहीं पाया, सत्य को रुक जाना पड़ा, जब सत्य रुके सदाचार वापस आया, दान वापस आया, लक्ष्मी भी वापस आई, अर्थात राजा पूर्णता को प्राप्त फिर कर गए। तो कहने के अर्थ है सत्यनिष्ठ पुरुष, सत्यनिष्ठ भक्त, निष्ठावान सत्य के साथ जो है बलराम जी की कृपा ऐसे ही बरस जाता है। कलियुग में भगवान श्री कृष्ण चंद्र हईल निमाय, बलराम हईल निताय, ये घोर कलियुग में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आए और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। इसलिए सत्य दैत्यापते कुलाधिमथने स्पृजन मुहु केसरी त्रेतायाम दश कंठ कंदर हरे रामोभिरामाकृति गोपालयन परिपालयन ब्रजकुले भारन हरन द्वापरे गौरंग प्रिय कीर्तन कलिजुगे श्री कृष्ण सचिनंदन। हा नवद्वीप किश्वर चंद्र श्रीनाथ विश्वंभर नागरेन्द्र, हा सचिनंदन चित्त चौर प्रसीद हे विष्णु प्रियेश गौर। सत्य युग में भगवान हिरण्यक्ष आदि असुरों का संहार करने के लिए नरहरि रूप में अवतरित हुए, नरसिंह रूप को लेकर के प्रकट हुए। त्रेता युग में रावण आदि असुरों का संहार करने के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। द्वापर में स्वयं अवतारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र कंसादि रावणों का कंसादि असुरों का संहार करने के लिए ये भूपृष्ठ पर अवतरित हुए। और कलियुग में भगवान गौरांग महाप्रभु स्वयं राधाभाव समन्वित हो करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तारक ब्रह्म पतित पावन महामंत्र को जप करते हुए कलियुग के प्राणी पाप स्रोत में बहते हुए इसी नाम की सहारा ले करके उद्धार हो जाएंगे, ये सोच करके गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव नवद्वीप में हुआ। सची माता के गर्भ से और विष्णुप्रिया के पति के रूप में ओ गौरांग महाप्रभु हमारे सभी उपस्थित श्रोता भक्तों के प्रति ऐसी कृपा करे ताकि सभी भक्तों का मन गौरांग महाप्रभु की चरण कमल में स्थिर रहे। तो गौरांग महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो लीला तो कभी नहीं बढ़ सकता था। और जब संकर्षण नाम पड़ा इनका, क्योंकि गर्भ से वो खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया, ये कार्य कौन किया, ना योग माया ने किया। उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवती सौरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृढ़ानी चंडिका अंबिका। विगत श्लोक में भगवान जब योग माया को बुलाते हैं वो यही वर देते हैं, योग माया तुम ये कार्य को करो और कलि युग में साधारण प्राणी तुम्हें पशु बलि दे करके कात्यायनी गौरी अंबिका दुर्गा इत्यादि के रूप में तुम्हारे पूजा अर्चना करेंगे और ये योग माया के रूप में यदि आप कभी कोलकाता के कालीघाटी में जाओ और जहां पर हनुमान जी ने पाताल काली की स्थापना की उस काली के सामने रोज 100, 200, 500 बकरी कट जाते हैं। परंतु यदि वा भगवान कृष्ण उन्हें इस प्रकार की बात कहा, जो मां है वो कभी संतान का रक्त पी नहीं सकता। वैष्णवगण जो वैष्णव वृंद है वो वैष्णवी के रूप में मां को पूजा करते हैं और वैष्णवी ना महा वैष्णवी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए ये चरित्र में जहां पर खून खराबा है, जहां पर रक्त की आदान प्रदान है, वहां पर वैष्णव का दर्शन नहीं होता, अर्थात वैष्णव उससे बहुत दूर रहते हैं। तो योगमाया भगवान को प्रणाम करती है और बोलती है, प्रभु आप जिस प्रकार आदेश मुझे दिया मैं इसी प्रकार ही आदेश का पालन करूंगी, क्योंकि भगवान आदेश दें और उसको पालन कौन ना करे। तो योगमाया ये कार्य करती है। हरिवंश पुराण में इसकी विस्तृत वर्णन है। जब देवताओं को जब देवताएं कष्ट में आए और भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए बार बार आविर्भाव होते हैं। यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मसंस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान बार बार इसी धरती पर आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। तो इस संदर्भ में जब भगवान अवतरित होते हैं उनकी लीला में कुछ असुर भी जन्म लेते हैं लीला को आगे बढ़ाने के लिए। पर इस लीला में जब रोहिणी के गर्भ से सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापना की गई तो हरिवंश पुराण में वर्णन है समस्त देवता लोक भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के पास पहुंचे। तब महाविष्णु जी उस समय सो रहे थे क्षीर सागर में। तो समस्त देवता एकत्रित होकर के पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान की आराधना किया। सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्षम सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्य तिष्ठ दशांगुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यम् उतामृतत्वे स्वेशानः जदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायांश पुरुषः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतम् दिवेः। ये 22 प्रेयर्स आप देवता लोग ये यजुर्वेद का महत्वपूर्ण प्रेयर में से एक प्रेयर है। सारा संसार में इसे तो तीन दुर्लभ वस्तु है, जो वस्तु ढूंढने से सभी जगह पर प्राप्त नहीं होते। वेदेषु पुरुषो सूक्तम
जो पुरुष सूक्त का तीन प्रेयर मैंने पाठ किया, ये 22 प्रेयर्स हैं। ये पुरुष सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस सूक्त को पाठ करने के पश्चात भगवान निद्रा से जागे और इन देवताओं को हरिवंश पुराण के अनुसार दो लोम निकाल करके देवताओं को दिया, एक है कृष्ण वर्ण का, एक है श्वेत वर्ण का। श्वेत वर्ण में बलराम जी की प्राकट्य हुआ और कृष्ण वर्ण में भगवान श्री कृष्ण का, दो लोम से। और कथा इसी प्रकार आगे बढ़ता है। और तब योगमाया को भगवान बुलाते हैं और योगमाया को कहते हैं जे योगमाया तुम ऐसे ही करना, सप्तम गर्भ जो है देवकी के गर्भ से लेकर के तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर देना। देखो भक्त, आज का मॉडर्न साइंस बहुत एडवांस में है, बहुत कुछ करने में समर्थ है, पर जिन दिनों में श्रीमद् भागवत लिखी गई थी उस समय की बात देखो, 7 महीने की संतान को 1 माह के गर्भ से निकाल करके दूसरी माँ के गर्भ में डाल देना, ये कैसी विचित्र टेक्निक था। क्या आज मेडिकल साइंस इस बात को कभी सोच सकता है? तो जिन दिनों में हमारा शास्त्र था, लिखी गई थी, वो जो टेक्निक है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान के सामने आज का मेडिकल साइंस भी शिष्य है, अर्थात तो स्टूडेंट है। तो रोहिणी के गर्भ से बलराम जी की प्राकट्य हुआ। पर भगवान के जो प्राकट्य है वो दिव्य है। भगवान का नाम भी दिव्य है, भगवान का रूप भी दिव्य है और भगवान का प्रकट होना ही दिव्य है। और जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं, जड़ चेतना में बदल जाता है और चेतना जड़ में बदल जाता है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, सब कुछ परिवर्तनशील हो जाता है जब भगवान की प्रकट हो जाए, भगवान आविर्भाव हो जाए, जड़ में भी चेतना भर जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ बंदी गृह में, उस समय क्या हुआ? जो बड़े बड़े ताला लगे थे वो अपने आप टूट गए, अपने आप खुल गए। जितने प्रहरी थे सब अपने आप सो गए। तो ये भगवान का विचित्रता है। भगवान के आविर्भाव हो जाए तो जड़ जो है वो चेतन में बदल जाता है और चेतना जड़ में परिणत हो जाता है। भगवान सर्वसमर्थ है, इसलिए बलराम जी की बिना कृपा से भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मनुष्य जब ये प्रश्न करे जे हमारे पास धन नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, तो भगवान के भक्त हम कैसे बने? ना, भगवान के भक्त कोई भी बन सकता है। इसलिए जाति वर्ण की आवश्यकता नहीं है। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किं नाम रूप अधिकम किं तत सुदाम्नो धनम वंशकः विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नतु गुणै भक्ति प्रियो माधव। ओ मृगारी जो व्याध था, वो कौन सा आचरण जानता था? ना उसे बैठना आता था, ना बोलना आता था, वो केवल जानता था हंट करना पशुओं को, और बिना मारे पूर्ण रूप से उसे छोड़ देते थे, तड़प तड़प के मरते थे। नारद मुनि का संग हुआ तो नारद मुनि जब वापस आ रहे थे, मृगारी जब प्रणाम किया, कैसे किया? चिट्ठियों को हटा हटा करके ऐसे भक्त बने। अगर मृगारी भक्त बन सकता है, हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज के पास कौन सा उम्र था जो उम्र होने के बाद हम भक्ति करेंगे। 5 साल की आयु में ध्रुव महाराज मधुबन में जाके तपस्या किया वृंदावन में और भगवत प्राप्ति हुई। उम्र की भी आवश्यकता नहीं है। पिता माता कभी बोलते ना अभी तो मेरा बच्चा बड़ा है, छोटा है। अज्ञानी पिता माता हैं, वो यही नहीं जानते बड़ा किसे कहता है छोटा किसे कहा जाता है। प्रत्येक दिन तो आपका बच्चा छोटा बनता जा रहा है, बड़ा कहां बन रहा है। एक दिन चले जाए हमारी परमायु का एक दिन कट जाता है, तो छोटा बन गया ना, बड़ा कैसे बना। परंतु ये मूर्ख समाज है, वो ये ज्ञान को समझने में असमर्थ है, इसलिए ऐसे चर्चा करते हैं। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य किम गच्छति जाति यौवनम तथापि लोक कथयति न बुध्यते। संसार सुख में पड़े हुए व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझने में असमर्थ है। जब से हमारा जन्म हुआ हमने देखा वही सूरज भगवान उगे, वही रात्रि में चंद्रमा आया, फिर संध्या गया, प्रभात आया, प्रभात गया, फिर रात्रि आया, फिर समय कैसे बिगड़ गया। समय तो वही है, आज भी सूरज उगते हैं चंद्रमा उगते हैं, परंतु अगर कुछ चला गया तो हमारा यौवन टल गई है। 20 साल पहले जो शरीर था आज नहीं है, वो चला गया है। किंतु ये बात को कालस्य किम गच्छति, समय का क्या गया हुआ है, हमारा उमल टल गया। समय आज भी वही है, पर लोक कथयति जो पागल लोग हैं, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सन्नेसु तत्सोपी तेसंग प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। वो देखकर भी नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। पर जब गर्भ में गर्भहरण हो गया, रोहिणी माता ने सोते सोते भी स्वप्न देखा जो मेरा गर्भपात हुआ, और योग माया ने उनको बताया ऐसा नहीं, मैं देवकी के गर्भ से संतान को लेकर तुम्हारे गर्भ में डाल रहा हूं। और उस रोने में जब सभी रो रहे थे, कंस भी रो रहा था। देखो कंस की चरित्र कैसा है। कंस हितेशी नहीं है भगवान का, ना बलराम का ना कृष्ण भगवान का, किंतु वो भी रोने में शामिल है। ये चरित्र को क्या कहा जाए, छद्मवेशी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघंसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रु चितांग ततोन्यम कंगवा दयालुम शरणम ब्रजेमह। ये भगवान के स्वभाव है। बकी संस्कृत में इसकी दो व्याख्या है। एक व्याख्या है जो हृदय से कुछ और मुंह से कुछ, जिसको कहते हैं मुंह में राम नाम बगल में छुरी, हाथी के दांत देखाने की और खाने की और। पर आज देखो उस पुतना को, बकी बकासुर की बहन का नाम है पुतना। पुतना ने क्या किया, ना बहुत सुंदर सा रूप को बनाया मां का, कमल के फूल को पकड़ा और कमल के फूल को घुमाती हुई गोपदांड में चलती हुई चलती है, और जाकर के क्या बोली, नंदरानी ओ नंदरानी तुम्हारा छोटा सा लाला हुआ है, वो मेरे गोद में दे दो, मैं उसे खीर पान कराऊंगी। नंदरानी भक्ति की रूप है, वो छल नहीं समझती, निष्कपट से भगवान को उठा करके दे दिया। और पुतना छल से घातक नामक जहर को स्तन में लगा करके गई थी। शरीर लिया है एक सुंदरी मां का और हृदय में छुपा रखा है जो कालकूट जहर दे करके संतान को मैं मार डालूंगी। भाव है बिल्कुल उल्टा, रूप है सुंदरता का और भाव है मैं बच्चा को मारूंगी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्तन से खीर पीने बहाने उस प्राण को शोषण किए। पर जो गति माता यशोदा को मिला वो गति पुतना को भी मिला। वो गति क्यों ना, जहर ही सही, पर जहर पिलाने के लिए इतने दूर से चल के तो आई थी। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान किसी का नहीं खाते। भगवान थोड़ा सा खाते हैं तो बहुत भर के देते हैं, थोड़ा सा खाते हैं तो बहुत भर के देते हैं। भगवान किसी का नहीं खाते। उस द्वारका की कथा है, भगवान आज बैठे हुए थे, सो रहे थे गजदंत पलंग में, और रुक्मिणी सत्यभामा दोनों उनकी सेवा में थी। रुक्मिणी चामर दुला रही थी, फेन दे रही थी, हवा दे रही थी, और सत्यभामा चरण दबा रही थी। दोनों ने बातचीत की। सत्यभामा बोलती है, 9 बज गया, सत्यभामा बोलती है, दीदी ये जो पतिदेव हमारा है ना, ये सचमुच किसको प्यार करते हैं? रुक्मिणी बोले, मुझे करते हैं, मैं उनकी बड़ पत्नी हूं, महिषी हूं, बड़ी रानी हूं, भगवान मुझे ही ज्यादा प्रेम करते हैं। सत्यभामा बोले, नहीं दीदी, इसलिए तो मैं चरण दबा रही हूं, आप हाथ हला रहे हो, प्रेम तो मुझसे करते हैं। तो दोनों मिल करके भगवान कृष्णचंद्र से पूछ बैठे, प्रभु सत्य बताओ, आप सच में प्रेम करते किसको हो? भगवान बोलते, प्रेम में करता हूं द्रौपदी को। दोनों जल बैठे, ये कैसे संभव है? अष्टपाट वंशी हम है, भगवान की नित्य सेविका हम है, भगवान को खिलाते हम है, सुलाते हम है, और भगवान प्रेम करते हैं द्रौपदी को, भक्त को। भगवान से पूछा गया ये प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न, ठाकुर जी सच सच बताओ, चतुर्दश ब्रह्मांड में यदि आप किसी को प्रेम ही करते हो, वो व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्णचंद्र मुक्त कंठ से बोले, दैपायन व्यास च्यवन उद्वालक नैमिषत्री ते ना जानती। इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि मुझे नहीं जानते, यदि चतुर्दश ब्रह्मांड में मुझे ठीक ठीक रूपेण कोई जानता है, मंग जानती गोपी कहा, केवल गोपियां ही मुझे समझ सकती है और कोई नहीं। और यहां पर भगवान बोलते, सत्यभामा रुक्मिणी प्रेम करता हूं तो मैं द्रौपदी से, ये बात पची नहीं रुक्मिणी की ना सत्यभामा को। तब वो भगवान को बहुत खारी कुटी सुनाए, तुम तो एक नंबर की लंपट हो, तुमने एक नहीं बहुत पुत्र किया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजांगनानाम दुकुलम च चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। तुमने गोपियों का वस्त्र चुराया, तुमने मक्खन चुराया, एक नंबर की चोर भी हो तुम, और तुम एक मर्डरर भी हो। रजक जा रहे था, वो रजक नहीं था उस दिन, सजग था। रजक नाम क्यों पड़ा? ना माताओं की जो रजवती की वस्त्र हो रानी की, उसको लेकर के जो धोता है उसको रजक कहते हैं। पर उस दिन धोबी सुंदर सुंदर वस्त्र आयरन करके लेके जा रहा था कंस दरबार में, और भगवान बोले, एक अच्छा कपड़ा मुझे भी दे। बोला, नहीं। भगवान क्या पुकारे? बोले, ए रजक, इधरा इधरा। रजक बोलते, आज मैं रजक नहीं हूं, मैं सजक हूं। रजक होके गया था, पर आया हूं सजग होकर के, साज गुज के आया हूं, सुंदर वस्त्र लेकर आया हूं, ये कंस के लिए है। भगवान बोले, नहीं, बोले नहीं, नहीं दूंगा। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने एक थप्पड़ मारा, गर्दन उड़ गया। वो टेक्निक क्या था? कराटे। ये श्रीमद् भागवतम में एक थप्पड़ में सर निकल जाए, कौन सी टेक्निक था वो? आजकल के जो मॉडर्न, हाथ को रेती में डाल के गरम करके लोहा जैसे बना के एक मारो हड्डी निकल जाता है। वो भगवान से, उन दिनों में भगवान से कहते ये कारीगरी बा कलाकार, तो तुमने बिना कारण से धोबी को मार डाला। केवल इतना नहीं, तुम जिस नारी के प्रति देखते हो उसके लिए तुम्हारे मन में किंतु हो जाता है। बोले मैंने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया। अरे तीन कुंज थी पीठ के ऊपर और थोड़ी सी चंदन लगा दी, इतना प्रेम बहा दिया आपने उसको, कुब्जा को। दोनों कुब्जा के पैर में भगवान पैर रख दिए, कुब्जा तो खड़ी नहीं हो पाती थी ना, पर भगवान को थोड़ा चंदन लगा दिए। भगवान दोनों पैर को कुब्जा के पैर में लिए और दोनों हाथ पकड़ करके खींच दिए और कुब्जा एकदम स्ट्रेट हो गई, दिव्य सुंदरी 16-1600 वयसी सुंदरी लड़की बन गई। और बोली प्रभु ये शरीर को आपने दिया, ये हुए भोग और आप ही भोक्ता, आप ही मेरे पति बनो। भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा किया। तुम तो यही करते रहे और आज भी बोलते हो प्रेम करते हो, किससे? द्रौपदी से। बसंत ऋतु आया, बसंत ऋतु में द्वारका में बसंत उत्सव बनाया जाता था, द्रौपदी आई, द्रौपदी और सुभद्रा दोनों ही आए भगवान से मिलने के लिए। तो द्रौपदी को देखते हुए सभी ने प्रणाम किए। भगवान जब द्रौपदी को देखा, भगवान तुरंत बोल पड़े, द्रौपदी ये घर में रहना मेरा द्वारका में मुश्किल हो चुका है, तुम ही कुछ करो। बोले क्या? बोले ऐसे ऐसे बात हुआ है, तुम्हारे दोनों जो भाभी है वो मेरे से बहुत नाराज है, रुक्मिणी और सत्यभामा। अभी रुक्मिणी और सत्यभामा क्या करते हैं? भगवान चाहते रुक्मिणी सत्यभामा मान जाए। उस दिन वो बगीचा में गए और बसंत ऋतु में एक आम पका हुआ था पेड़ में, भगवान उसको तोड़ लिए। भगवान बोले जे देखो सत्यभामा और रुक्मिणी, ये जो आम है ये रसाल फल है, इसको बांट के तुम लोग खाओ। तो रुक्मिणी और सत्यभामा क्या बोले? आज परीक्षा हो जाए। ये सचमुच बोले थे द्रौपदी से, द्रौपदी तो आ गई और उनकी बहन भी आई है, हम देखते हैं ये किसको सचमुच प्यार करते हैं। आम हम नहीं काटेंगे, हम भगवान को बोलते हैं, वो काट के दे। तो वो भगवान को पकड़ा दिए। बोले प्रभु हम क्यों काटे, आप लेके आए हो, आप काटो और सबको बांटो। भगवान ने लीलाधारी मायाधारी लीला रच दिया, एक आम काटते काटते बैठे अपनी अंगूठी को दे दिया काट, खूने खून भगवान का हाथ हो गया। तो सभी चिल्ला उठे, क्या हुआ? भगवान का हाथ कट गई, भगवान का हाथ कट गया। तो रुक्मिणी और सत्यभामा ढूंढ रहे थे वस्त्र, जब भगवान के हाथ को कैसे बांधा जाए। सारा राजमहल ढूंढाए, उनको कहीं एक पुराना वस्त्र नहीं मिला जिसको फाड़ के ठाकुर जी को बांधे, पर द्रौपदी खड़ी थी, अपनी वस्त्रों को फाड़ दी और ठाकुर जी के हाथ में बांध दिया। जब रुक्मिणी और सत्यभामा वापस आ रहे थे, भगवान के हाथ कपड़ा में वस्त्र बंधा हुआ था। तो यही सूत्र है, भगवान किसी का नहीं खाते। द्रौपदी ने अपनी वस्त्र को फाड़ी और थोड़ी सी भगवान के हाथ में बांध दी थी, और उसकी बदले में जब द्रौपदी की विपद आया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने वस्त्र रूप दे करके उसकी लज्जा को निवारण किया। तो भगवान किसका नहीं खाते। बाकी रहा ये कंसासुर का, ये कंस वास्तव में उग्रसेन, आई थिंक समय हो चुका है, हाँ 4 मिनट। तो ये कंसासुर जो है, यदिवा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जो उग्रसेन की पुत्र हैं, और हम भक्ति जीवन के जो चरित्र ले आया जे उग्रसेन अपुंसक है, उसकी कोई संतान संतति नहीं है। तो एक दिन की कथा ऐसे हुआ, ये उग्रसेन की पुत्र नहीं था, ये दुर्मिला असुर की पुत्र होने के कारण उसकी हमेशा ये वृत्ति था कंस का, जो कंस की वृत्ति ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि रक्त यदि भक्त का हो तो अमंगल सूचक शरीर में कैसे आ सकता है। तो एक दिन इंदुमती रानी है उग्रसेन का, स्नान शौचादि करके राज प्रसाद के ऊपर में छात के ऊपर अपने बाल को धूप में सुखा रही थी। आकाश मार्ग में जा रहा था दुर्मिलासुर और उसकी आंखें इंदुमती के ऊपर पड़ गई। इंदुमती अतीव सुंदरी थी और जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा ही पाप का दर्शन करते हैं। क्षुदा तुराणाम नहीं शुद्ध बुद्धि, तृषा तुराणाम न च पात्र शुद्धि, निद्रा तुराणांग न च भूमि सज्जा, कामा तुराणाम नहीं लोक लज्जा। इंदुमती को देखते ही कामावेश में आ गए दुर्मिलासुर, परंतु वो राजा की पत्नी थी तो इसलिए उन्होंने कहा यदि मैं कुछ करता हूं तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। तब उसने अपनी कुबुद्धि को प्रयोग किया, एक द्वारी द्वारपाल के रूप में प्रकट हुआ, हो करके उग्रसेन को कहा मैं बहुत विचक्षण हूं ये नीति में, तो आपकी रक्षा में ठीक से करूंगा। तो परीक्षा के लिए उन्होंने उनको हायर कर लिया और राज दरबार में रखा, परंतु इतना सुंदर रिजल्ट देता गया तो उग्रसेन ने उनको रानी के महल की द्वारपाल बना दिए। ये तो यही ढूंढ रहा था। तो जब ऋतुकाल की पंचम दिवस में चतुर्थ दिवस में हल्दी लेपन करके इंदुमती नदी में स्नान करने के लिए प्रभात समय में निकल गई तो उन्होंने ये मायावी ने शरीर बना लिया उग्रसेन का, और उग्रसेन जैसे रथ को बना करके नदी के किनारे पहुंच गया। और इंदुमती जब उठे बोले देवी आओ, ये ऐसे लगता है वर्ष बीत गया, तुम्हें मैं वन विहार कर देता हूं। तो रथ में घुमा दिए इंदुमती को और इंदुमती के गर्भ में कंस आया। कंस दुर्मिलासुर का पुत्र था। जब इंदुमती को पता चला फिर स्टोरी आगे आगे बढ़ता है। इसीलिए कंसासुर छद्म वेश में यहां रो रहा है उनके साथ, जो अच्छा ही हुआ देवकी के गर्भ नाश हो गया, तो उसमें भी सभी रो रहे थे, ये भी रो रहा था। इसको छद्म वेश कहते हैं। तो छद्म वेश में भगवान प्राप्त नहीं होते, जैसे पुतना छद्म वेश लेकर के ठाकुर जी के पास गया, दुर्योधन छद्म मन में कपट भाव को लेकर के ठाकुर जी का सामना किया, ठाकुर जी जान सुन करके अर्जुन को आलिंगन के और अर्जुन के रथ का सारथी बन बैठे, जबकि दुर्योधन पहले गया हुआ था महाभारत। तो इसलिए जिसका हृदय निर्मल हो, जो सत्य के साथ हो, हाँ कभी कभी सत्य के साथ रहने वाले व्यक्ति को भी बड़े दुख उठाना पड़ता है, तो समझ लेना वो भगवान की परीक्षा है। जैसे सुवर्ण को आग में जला करके उसके अलंकार बनाया जाता है और भक्त अगर तपा तपा करके कष्ट पाता है, उसको समझ लेना चाहिए भगवान की ये भी एक परीक्षा है और ये परीक्षा में मैं अवश्य उतरूंगा। और विजय धर्म का होता है, सत्य का होता है, असत्य का आज तक कभी डिग्री हुआ ही नहीं। हरे कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरि।